نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدی اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے تو کہا کتنی بری جانشینی کی آپ نے میری میرے بعد عاجل تم امر ربکم کیا آپ نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے ولکل الواح اور ڈال دیں تختیاں وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور لگے اپنے بھائی کے سر کو ہلانے اپنی طرف قال ابن ام کہنے لگے میری ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی میری اس قوم نے مجھے کمزور جانا وکادوا یقتلوننی قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے لہذا فلا تشمت بی الاعداء پس نہ خوش کر میرے ذریعے دشمنوں کو ولا تجلنی مع القوم الظالمین اور نہ کر ہم مجھے ظالم قوم کے ساتھ اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ کر. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 ہے. دنیا میں پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس عمل کا یہاں ذکر ہے وہ ہے غصہ. تو آئیے آج تھوڑی سی غصے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور آ جائے تو کیا کرنا ہے اور کیا غصہ کرنا گناہ ہے. تو پھر کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ یہاں برا تھا؟ اور عموماً ہم کسی کے بارے میں جب یہ جملہ بولتے ہیں فلاں بڑے غصے والا ہے تو ہمیشہ اس کو نگیٹو لیتے ہیں, لیکن غصے کی کیا حقیقت ہے اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ دوسروں کو غصہ آئے تو کیا کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں پریکٹیکلی اینڈ پہ ہم ایک چیک لسٹ بھی بنائیں گے. یہ بتائیے کہ آپ میں سے اس وقت کسی کو میرے اوپر غصہ تو نہیں آ رہا کہ ہمیں نیچے بٹھا دیا ہے, خود اوپر بیٹھ گئے, خود اتنے کھلے بیٹھے ہوئے ہمیں اتنا تنگ بٹھا دیا ہے. جس کو غصہ آ رہا ہے وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے. اور کسی کو کوئی غصہ, کوئی دل کی بات, کوئی گرج, اندر والے باہر والے؟ باہر والوں کو تو نہیں غصہ آ رہا کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم 15 منٹ ہی لیٹ آئے ہیں تب ہم باہر بیٹھ رہے ہیں. کسی کو غصہ تو نہیں آ رہا کہ مجھے ریسیپشن پہ کیوں بٹھا دیا, سب کو اندر بٹھا دیا, مجھے تو اندر بیٹھنا تھا. تو غصے کے باوجود بھی آپ کو لیکچر تو سننا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیے کہ غصے کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں بھی ہم غصہ کہتے ہیں, غضب کہتے ہیں, اسی طرح عربی زبان میں اگر ہم غصے کے لفظ کو دیکھیں تو اس کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے. غین دعات با اس کا روٹ ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس ایک روٹ سے تقریباً 24 لفظ آئے ہیں, لیکن غصے کے لیے اس سے زیادہ مختلف اور لفظ بھی ہوتے ہیں. کاظمین الغیظ کا لفظ آتا ہے سورۃ آل عمران میں, تو غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اگر میں آپ کو بغیر سوچے پوچھوں کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں غصے کا لفظ کہاں آتا ہے, اور خاص طور پہ یہ نور الان نور والوں کی سختی ہے جو آن لائن سے سن رہے ہیں, تو آپ لوگ لکھیے. آپ کہیں گے ہمیں کیا پتہ, ہم نے آیتوں کی ترتیب تو نہیں یاد کی ہوئی, ہم نے کوئی نمبر تو نہیں یاد کیے ہوئے. ادھر والوں کو بھی حق ہے. شاباش. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ ہمیں غضب شدہ لوگوں کا راستہ نہ دکھانا. تو کیا پتہ چلا کہ مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ آ جائے. اور غصہ ایک طاقت ہے, نوٹ کیجئے گا, غصہ ایک طاقت ہے, لیکن اس کا غلط استعمال ایسے ہی ہے جیسے شکاری کتا. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کتوں کو سدھاتے ہیں تو وہ کتے پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں یا پھر وہ ان کے لیے شکار پکڑ کر لاتے ہیں. تو غصہ ایک کتا ہے, اگر اس کو سدھا لیں تو یہ آپ کے حق میں فائدہ مند ہے, اور اگر اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں اور غصے میں آپ کھولنے بھی لگیں اور کھلانے بھی لگیں تو پھر یہ کتا کبھی کبھی اپنے مالک کو بھی کھا جاتا ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ خلاف شرع کاموں کو ہوتا دیکھ کر بندہ غصے میں آئے. کوئی اپنے پاس, اپنے گھر والوں میں, اپنی بیوی بچوں میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھے اور غصہ نہ کرے तो ये उसके मर्द होने के ख़िलाफ़ है। तो गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये बदनाम क्यों है? क्योंकि हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। कुरान पाक में इसको बहुत मुख्तलिफ तरह में किया, और याद रखिए कि गुस्सा बुरा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो अल्लाह को भी आता है। सूरत अल-बकरा की आयत 61 में अल्लाह ताला ने यहूद की हिस्ट्री यानी माजी के मुसलमानों का तذکرہ करते हुए फरमाया, वबाउ बिगदबिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए, अल्लाह की पकड़ का शिकार हुए। फिर सूरत बकरा आयत 90 में अल्लाह ताला कहते हैं, फबाउ बिगदबिन अला गदब, ये तो गुस्से पर गुस्से पे आए, यानी गुस्सा इन पे अल्लाह का गुस्सा बहुत ज़्यादा पलटा। फिर सूरत आल इमरान 112 में आता है, वबाउ बिगदब मिनल्लाह वदुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु, कि उनको अल्लाह का गज़ब भी मिला और उनके ऊपर मस्कीनी भी आ गई। फिर सूरत निसा आयत 93 में फिर अल्लाह के गज़ब का एक मुझे जिक्र है, वगदिब अल्लाहु अलैहि, यानी कत्ल की बात है पीछे, कि जो किसी को कत्ल करेगा तो फिर क्या होगा। वमै यक्तुल मोमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो किसी को जानबूझकर कत्ल करेगा उसकी जज़ा जहन्नम है, हमेशा रहेगा उसमें, और गदिब अल्लाह गदिब अलैहि, उस पर गज़ब भी होगा। तो क्या पता चला कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अल्लाह को गुस्सा आता है। और सूरत अल-आराफ आयत 71, उसमें भी अगर आप नोट करें तरतीब, तो सूरत फातिहा से लेकर सूरत अल-आराफ तक जहाँ भी लफ्ज़ गज़ब आया, ये अल्लाह के गज़ब की बात है। वक़ाला क़द वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज़्सुन व ग़ज़बुन, कि बेशक तुम पे आ पड़ा है गज़ब तुम्हारे रब का। तो क्या पता चला कि गुस्सा अल्लाह को भी आता है, और अल्लाह ताला को गुस्सा कब आता है? जब कौमें नाफरमान हो जाती हैं, और फिर कभी कभी गुस्से में वो ज़मीन को भी हिला देता है, और कभी एक दो झटका देकर हमें बता देता है कि जिस तरह ये ज़ाहरी ज़मीन के झटके तुम्हें आज झंझोड़ रहे हैं, इसी तरह दुनिया में मुसलमानों के अरूज और जवाल की कहानियाँ समझो, और अल्लाह की आखिरी पकड़ से बचते हुए आज ही तुम अपने ऊपर लो। फिर उसके बाद देखिए सूरत अल-आराफ में 150 जो मैंने अभी आपके सामने रखी, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गज़ब की बात हुई। तो गज़ब और गुस्सा ये सब कुछ क्या है कि हमें ये बताता है कि गुस्सा आएगा, लेकिन मैंने और आपने क्या करना है। सूरत शूरा आयत 37 में अल्लाह ने हमें मशवरा दे दिया, व इज़ा मा गुदिबू हुम यग़फिरून, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। फिर इसी तरह सूरत अल आल इमरान आयत 134 में आता है, वल काज़िमीन अल गैज़, और वो गुस्से पे काबू पाने वाले हैं। तो अभी तक कितनी बात पता चली कि गुस्सा तो आएगा लेकिन माफ़ कर देना है, और गुस्सा तो आएगा लेकिन हमने उस पे लोगों को माफ़ करना है, गुस्से को काबू पे रखना है। और इस नाते से यानी गुस्से की बात को सामने रखिए कि गुस्सा उन तीन में से एक सिफत में है कि जिस पर काबू पाने में अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत की बात है। कौन सा? गुस्से को पी जाने वाले, वल काज़िमीन अल गैज़, वलाफ़ीन अनिन नास, बंदों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले, और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह पसंद करते हैं मुहसिनीन को। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की तीन अलामतें हैं जिसमें से एक गुस्सा है। आइए थोड़ा सा हदीस की रोशनी में भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कैसे बयान किया। सही बुखारी की रिवायत है 6114 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा शदीदु बिसुरा। अब आप अपने जहन में लाइए ज़रा इसके लफ्ज़ों को, नहीं है पहलवान वो जो क्या करे कुश्ती में पछाड़े। आज तो वो मुकाबले नहीं होते ना, लेकिन रेसलिंग का नाम तो सुना ही होगा, यानी रेसलिंग में एक शख्स अपने मुखालिफ को हरा दे तो हम कहते हैं वो बड़ा बहादुर है, ताकतवर है, हिम्मत वाला है। कब? असल पहलवान वो नहीं है, इन नम शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हाँ, वो कौन है मजबूत और बहादुर जो गुस्से में अपने ऊपर काबू पाए। बचपन से ये हदीस सुनी हुई है, ज़रा इसको सामने रखिए और ज़हन में रखिए कि जिस वक़्त किसी को गुस्सा आता है, अपने पर लेकर सोचें, उस वक्त वाकई उस गुस्से को काबू पाना कितना नामुमकिन लगता है। उस वक्त हमें लग रहा होता है कि हाय इस वक्त तो पीछे हट दो, उस वक्त सारी हदीसें भूल जाती हैं, अजर के सारे सवाब के वादे याद नहीं रहते, सारी वो बातें जिसकी जो बाद में नुकसान होने वाला है वो याद नहीं रहता। यानी लिख लीजिए बड़ा बड़ा कि गुस्से के वक्त इंसान की याददाश्त खो जाती है। गुस्सा एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जो एक इंसान के लिए इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है कि वो फिर अपने नफ़े नुकसान को भी नहीं देख पाता। इसी तरह अबू दाऊद की एक रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, इन्नल गदब मिन शैतान, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। वह इन शैतान खुलिक मिन नार, और शैतान को आग से पैदा किया गया। तो आग, शैतान खुद कहाँ जाएगा? आग में जाएगा ना। हमें कहाँ लेके जाना चाहता है? आग में लेके जाना चाहता है। तो मुझे और आपको क्या फिक्र करनी है इस बात की कि हमें गुस्सा आए तो हम उसमें अपने होश गुम ना कर दे। फिर इसी तरह हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत इब्ने माजा में किताबुज़्ज़ुहद 4189 नंबर में फरमाए, किसी बंदे ने अल्लाह के नज़दीक गुस्से के घूंट से भड़कर अजर वाला कोई घूंट नहीं पिया जिसको अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए पीते हैं। यानी वो गुस्सा जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए पी लिया जाए, अल्लाह को उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और बंदे के लिए इससे ज़्यादा अच्छा घूंट कोई नहीं। यानी ये एक ड्रिंक है, लिख लीजिए कि गुस्सा एक ड्रिंक है। जब अल्लाह की रज़ा के लिए पियेंगे ना तो आपको इसमें लज्जत बहुत आएगी। फिर इसी तरह सहल बिन माज से एक रिवायत है, अबू दाऊद में 4777 नंबर की रिवायत है, फरमाए, मन कज़म गैज़न, कि जिसने गुस्से को काबू में कर लिया, बहुवा कादिर, हालांकि वो कादिर था, किस बात पे, आला आई युनफिज़हू, कि वो इसका इजहार कर सकता है, गुस्सा निकाल सकता था। इमेजिन करें, कौन निकाल सकता है? शोहर निकाल सकता है, बीवी हर वक्त नहीं निकाल सकती, है ना। मालिक निकाल सकता है, गुलाम नहीं निकाल सकता, नौकर नहीं निकाल सकता, बेगम साहिबा निकाल सकती हैं, जो भी निकाल सके। और फिर वो ना निकाले, दाहुल्लाह यौमल क़ियामा, बुलाएगा उसको अल्लाह ताला क़ियामत के दिन, अला रूसिल खलाई के हत्ता युखय्यिरहु मिनैल हूरिल ईन शाअ, सब के बीच में अल्लाह उसको बुलाकर कहेगा, जिस हूर को तुम चाहो उसको पसंद कर लो। और इस बात को सुनकर तो आपको भी गुस्सा आ गया होगा कि इनको हूर मिल गई, गुस्से पे काबू पाने पे हमें क्या मिलेगा? आपको अपने रब की रज़ा मिलेगी। लिहाजा ऐसी बातें जो अल्लाह ताला ने लिख दी हैं, कह दी हैं, उसको दिल की खुशी से मानना चाहिए, उस पर कभी भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद की रिवायत इब्ने अब्बास से, फरमाया, अल्लिमु व यस्सिरु, सिखाओ और आसानी करो, वला तुअस्सिरु, और तंगी ना करो, व इज़ा ग़दिब अहदुकुम, और जब तुम में से किसी एक को गुस्सा आ जाए तो क्या करे, लिख ले बड़ा बड़ा, फल यस्कुत, खामोश हो जाए। उस वक़्त फिर इंसान जितना खामोश हो सकता है खामोश हो जाए, क्योंकि उस वक़्त थोड़ी देर की खामोशी इंसान को बाद में बहुत बड़े बड़े फ़ायदे देती है। जैसे तूफ़ान आता है तो उस वक़्त अगर कोई फसल अपनी जगह पे कायम रह जाए तो बाद में खड़ी रहेगी ना अपनी जगह पे, लेकिन जलजले के वक्त कोई इमारत खड़ी रहे तो बच गई ना। तो गुस्सा भी किसी जलजले से कम नहीं है। उस वक्त ना बोलना है ना कुछ, खामोश। अक्लमंद इंसान है कि जो गुस्से में खामोश रहे, वरना आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आम ज़िंदगी में इतने अच्छे होते हैं, सो सॉफ्ट, सो डेलिकेटिंग, तो लोग कहते हैं आपने इनको गुस्से में नहीं देखा। और जब वो गुस्से में बोलते हैं या अपनी बातें सुनाते हैं, बाद में खुद मुँह छुपाते फिरते हैं कि सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था। तो लिहाजा गुस्से के वक्त पर खामोशी बेहतर होती है। अब सवाल पैदा होता है कि जब एक इंसान को गुस्सा आता है तो उस वक़्त उस गुस्से की हालत में उसकी वजह क्या बनती है, वजह क्या है कि उसको गुस्सा क्यों आए? अल्लाह ने ना रखा होता, ना रखते अल्लाह ताला, तो गुस्से की शरई हैसियत क्या है? यानी इस्लाम में गुस्सा फ़र्ज़ है, सुन्नत है, हलाल है, हराम है, मकरूह है, क्या है, हमें मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए कि गुस्से का आना शरीयत में काबिल मज़म्मत नहीं है, लेकिन इस गुस्से का तकाजा अगर इंसान को हराम काम पे माइल कर दे, नाजायज़ काम पे ले जाए, किसी की ज़्यादती करने पे आ जाए, किसी को कत्ल कर दें, गाली गलोच दे दें, तलाक दे दे कोई गुस्से में, तो हराम हो जाता है। बात वाज़ेह, अपनी जगह बुरा नहीं। जैसे बॉयलिंग वाटर है, अच्छी चीज़ है, चाय बनती है, चावल पकते हैं, आप सफाई में काम लेते हैं, लेकिन अगर उबलता हुआ पानी आप किसी के ऊपर डाल दें तो तकलीफ़ दें। हीटिंग बॉटल देखी होगी, खोलता हुआ पानी होता है उसमें, आपकी कमर में दर्द है, आप कमर को गर्म कर लेते हैं, कंधे में वहाँ रख लेते हैं, लेकिन अगर वो उबलती हुई बोतल का ढक्कन खोल जाए तो आपकी अपनी कमर जल जाएगी। मेरे लाशौर में गुस्से से भरा हुआ शख्स रियल में एक बॉयलिंग वाटर से भरी हुई बॉटल है, اور ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ بوتل کا ڈھکن کھل جائے تو کیا حال ہو. اسی لیے غصہ جو ہوتا ہے نا انسان کو خود زیادہ تکلیف دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا چلو کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے, غصہ آیا چلا ہی گیا نا. بعض لوگ یہ بھی بڑا مان کرتے ہیں چلو جی آ تو جاتا ہے چلا تو جاتا ہے, تو پھر کیا کہ غصے میں بولتے ہیں بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض سسٹرز اپنے شوہروں کا کہتی ہیں غصہ آتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں لیکن بھی بعد میں سوری کرتے ہیں. اب آپ اس کو سمجھیے, ایک باپ نے دیکھا کہ اس کے بچے کو بہت ہی غصہ آتا ہے نا, اور پھر غصہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے جو بھی ہے. اس نے اس کو ایک لکڑی کا ٹکڑا لا کر دیا, جیسے چیک بورڈ ہوتے ہیں یا ہارڈ بورڈ کچھ بھی, ساتھ کیل لا دیے. کہنے لگا کہ بیٹا جب تمہیں غصہ آئے گا نا تو ایک کیل پکڑ کر اس کے اندر ہتھوڑی سے ٹھوک دینا. کہتا اچھا ٹھیک, پھر بعد میں کہنا نکال دینا. اب جب اس بچے کو غصہ آتا تو وہ ایک کیل اس لکڑی میں ڈالتا, جب وہ اس میں مصروف ہوتا تو تھوڑا سا اس کا توجہ چونکہ بڑھتی تو جس بات پہ غصہ آیا ہوتا وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا. اتنی بات ہوئی. جب غصہ چلا گیا تو اس کے بعد کیا کرتا, الحمدللہ وہ پھر ٹھیک ہو جاتا. ایک مہینے تک ایسے ہی کرتا رہا. باپ نے کہا کہ جاؤ وہ لکڑی کا ٹکڑا لے کر آؤ. جب دیکھا تو وہ ٹکڑا سوراخوں سے بھرا ہوا تھا. تو باپ نے کہا کہ دیکھو تم نے غصہ کیا, پھر ایک کیل لگایا اور پھر تھوڑی دیر میں نکال بھی دیا, لیکن اس لکڑی کے ٹکڑے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو سوچو کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری روح کا کیا حال ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے. غصہ کر کے اپنے غصے کا بے جا قسم کا اظہار کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. کوئی ماں پسند کرتی ہے ایسے بچے کو؟ کوئی بیوی پسند کرے گی ایسے شوہر کو؟ کوئی بہن پسند کرے گی؟ کوئی استاد ایسے شاگرد کو یا شاگرد ایسے استاد کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو غصے کے وقت واقعی اپنے اوپر قابو پانا کسی بھی پہلوان ہونے سے کم بات نہیں ہے. پھر اب چند باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ غصہ آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی وجہ تکبر. ہم نے الحمدللہ اس سے پچھلی سیریز میں آپ کے پاس ہی صبح کے لیکچر میں تکبر پہ بات کی ہے. تکبر بہت بڑی وجہ ہے غصے کی. اب آپ اس کو بالکل جنرل لیں, تھوڑے ایک تو بچے ہیں روم میں ان کو بھی غصہ آ رہا ہوگا, ان کو باہر بھیج دیں کیونکہ وسپرز بھی آ رہی ہیں اور ان کی مائیں بھی توجہ نہیں رکھ رہی. تو چھوٹے بچے جو بھی اس روم میں ہیں ان کو آپ کی فائدے کی خاطر یہ ہے کہ آپ باہر دے دیجیے, ان شاء اللہ ساتھی ان کی ٹیک کیئر کریں گے. آپ خاموشی سے ایسے سنیں جیسے آپ اسکول کالج میں سنتے ہیں, سب بیٹھے رہے بچوں کو لے لیتے ہیں یہودی. تو اس میں کیا ہے کہ تکبر سب سے پہلی وجہ. تکبر کیا ہے بہت اچھی طرح ہم سمجھ گئے ہیں, دہرا دیتی ہوں وہ ساتھی جو پیچھے نہیں تھے. خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. اب آپ امیجن کیجئے, میں آپ کو اس کو بالکل ایک جنرل سی مثال لے کر سمجھانا چاہتی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ آپ کی ماسی آئی, وہ پہلے سے سوچے آئی تھی کہ آپ نے اس کو باہر سے کہنا چلو کام کرو. آپ کہتے نہیں تم بھی سردی میں آئیے آؤ بیٹھو تمہیں چائے دوں. چائے کا کپ دیا, وہ بیٹھ کے زمین پہ پینے لگتی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں زمین پہ نہیں بیٹھو, ادھر آؤ اندر آؤ صوفے پہ آؤ. آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے پاس صوفے پہ بٹھا لیں, اس کے لیے یہ کتنی بڑی آنر ہے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس کو اپنے برابر صوفے پہ بٹھائیں گے, وہ اس پہ بڑی خوش ہے. اس کے برعکس آپ کے گھر میں کوئی وزیر مشیر کی بیگم آئیں یا کوئی بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی خاتون ہے, تو وہ آتے ہی کیا سوچیں گی کہ آپ نے تو اپنے گھر کا سب سے بہترین کمرہ کھولنا ہے, ڈرائنگ روم سے بھی آگے کوئی جگہ ہے. پھر بہت پروٹوکول سے آپ کو وہ بٹھائیں گی, پھر اس کے بعد آپ کی خاطر کریں گی. لیکن آپ نے ان کو کیا کہا تھا, آئیے آئیے کیا حال ہے. اب سیم اسی صوفے پہ بٹھا لیں باہر لاؤنج میں جہاں آپ نے صبح ماسی کو بٹھایا تھا اور وہ شکریہ کرتی نہیں تھکی. مجھے بتائیے کہ یہ خاتون وہیں اسی صوفے پہ بیٹھ کے اسی طرح مشکور ہوں گی جیسے آپ کی ماسی ہوئی؟ نہیں ہوں گی. اندر کیا ہے بڑائی, مجھے تو اوپر بٹھانا تھا کرسی پہ نیچے بٹھا دیا, یہ ہے کبر. جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا تو لوگ ہمیں جتنی بھی عزت دے دیں نا ہم اور ہی اکڑتے ہیں, اور جتنا کیلیپر ہوتا ہے نا بندے کا بس اتنی ہی عزت وہ برداشت کرتا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ عزت دے کر ہم سر پہ چڑھا لیتے ہیں. یاد رکھیے اکثر ہمارے گھروں میں معروف ہے داماد بڑے غصے میں, سسرال بیٹی کے باپ ماں, لڑکے کی ماں, اس طرح کے کچھ لفظ ہم نے تکبر کی وجہ سے بنا لیے ہمیں کہ ان رشتوں کو تو عزت دی جائے گی. بارات کا لفظ لے لیں, ہم تو براتی ہیں, یعنی ذرا آپ نے ٹیڑی میڑی بات کی تو ہمیں غصہ آئے گا, یہ کبر ہے. آپ اگر یہ سوچ کے کہیں جاتے ہیں نا کہ بس میرے تو آگے پیچھے لوگ پھریں گے, دیکھنا مجھے دیکھ کر تو دم سج جائیں گے, تو یہ بھی کبر ہے. इवन अगर आप दीन के लिए कहीं आते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि बाज़ दीनदार या बाज़ पीर साहब टाइप के जो लोग होते हैं, कैसे लोग उनके आगे फिरते हैं और वो ख़ुशी से अपने उनको खिदमतें करवाते हैं। अच्छा नहीं लगता कोई जी हजूरियाँ, कोई किसी को कुछ करे, क्यों? क्योंकि इज़्ज़त और चीज़ होती है, लेकिन किसी को होली बना लेना और उसको ही पूछते रहना, ये दुरुस्त बात नहीं होती, राइट? तो लिहाजा तकब्बुर बहुत बड़ी बात है। हर वो औरत जो ख़ुद को बड़ा समझेगी, वो तकब्बुर का शिकार है, वो ज़रूर बात बात पे गुस्सा करेगी। और हर वो शौहर, मर्द, लड़का, बेटा, भाई जो ख़ुद को बहुत अहम चीज़ समझता है, तकब्बुर होगा। आप आज जाके इसको बैठ के लिखिएगा, हर एक का मसला, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कैसे एंगर मैनेजमेंट करें, बाप को गुस्सा आए, बेटे को आए, भाई को आए, क्या करें। आसान सी बात है इसकी कि आप देखिए कि फलां बच्चा आपका गुस्सा करता है, आप देखेंगे कि उसके अंदर खुद नुमाई और ख़ुद पसंदी की बात होगी। अभी एक रीज़न है, मैं सारी बता दूँ फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है। और आप अपने चोर अंदर से भी शुरू कर दीजिए कि मुझे बहू की बात पे क्यों गुस्सा आता है, बेटी की बात पे तो क्यों नहीं आता। किबर है, सच्ची जो बात है, चूँकि मैं सास, चूँकि तेरे शौहर की बीवी माँ, चूँकि मैं तुझे लेके आई। तो आप देखें कि आपने कभी नहीं देखा, बेटियां माओं की इतनी बेइज्जती भी कर देती हैं, माँ को कोई नहीं चुपता, थोड़ी देर बाद वैसे ही होती हैं। और बहू बेचारी एक लफ्ज़ कह दे, देखें जब तक वो उसका कोई किनारा ना ढूंढ ले, वो नहीं बाज आती। क्यों? किबर है। हमें बड़ा बनाओ, हमारी इज्जत करो। इसी तरह आप देखिए, बाज़ मर्द बाहर बड़े पोलाइट होते हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सेक्रेटरी के साथ तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और बेगम की छोटी सी बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अल्लाह ने बड़ाई का हक सिर्फ खुद अपने पास रखा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि बड़ाई मेरी चादर है। और दिन में 17 बार या का नाबुदू व या का नस्तईन कहने वाले इंसान को कहाँ सजता है कि वो बड़ा बने। जो इंसान दिन में कई घंटे अपने आप को गंदगी में महसूस करे, वॉशरूम में जाए, टॉयलेट में जाए, पसीना आए, बू आए, क्या उसको हक बनता है कि वो बड़ा बने? तो लिहाजा अपने अंदर से किबर और बड़ाई को निकालने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से गुस्सा आता है, वो है कुव्वत बर्दाश्त की कमी, टॉलरेंस नहीं होता। और आपने इंशाल्लाह मर्ज़ ढूंढना है, वजह ढूंढनी है, वजह ढूंढनी है तो मर्ज़ भी ढूंढा जाएगा। और वो क्या है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती, कोई कुछ। अच्छा, आप खुद भी कई दफ़ा अपनी बीमारी से तंग होते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों गुस्सा आ गया था। तो अब आप सोचिए, तकब्बुर नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये तो नहीं है। अच्छा, फिर ऐसी बात है, कुव्वत बर्दाश्त की कमी है मेरे अंदर। कुव्वत बर्दाश्त की कमी बहुत बड़ी वजह होती है गुस्से की। बात बे बात आप भड़क ही उठें, भी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, चंद सेकेंड के बाद बात ठीक हो जाएगी। आप देखिए, माचिस की तीली को जब आप डिबिया पे रगड़ते हैं ना, तो चंद सेकंड के लिए एक दूसरे से लगती है तो शोला निकलता है, और अगर उस वक्त फौरन वो माचिस ना सुलगे तो फिर नहीं सुलगती। बस गुस्सा भी यही है। अगर आपको किसी की बात पे सिर्फ इस वजह से गुस्सा आता है ना कि आप में कुव्वत बर्दाश्त की कमी है, तो अपनी बर्दाश्त बढ़ाइए, एक सेकेंड चलें, अगली दफ़ा दो सेकेंड बर्दाश्त करें। मैं बहुत गुस्से का इजहार करूँगी, बस दो सेकंड के बाद, चलिए दो सेकंड बाद कर लें, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगली दफ़ा आपके, अच्छा मैं तीन सेकंड के बाद। आप एक एक सेकंड करके आप देखिएगा, जिस दिन एक मिनट पे पहुँच जाएंगी ना, 60 दफ़ा आप तजुर्बा कर लें एक एक सेकंड का, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जिसने एक मिनट बर्दाश्त कर लिया गुस्से को, उसको आएगा ही नहीं। ये तो झाग है ना, मिट जाएगी, माचिस की दीली हट गई, अब आग कोई नहीं लगनी। एक मिनट बहुत लंबा लगेगा आपको गुस्से की हालत में। 30 सेकंड भी अगर आप अपने आप को रोक गए ना, हम कहते हैं ना मेरे तो तन बदन में आग लग गई, मैं तो बर्दाश्त ना कर सकी, ये हो गया वो हो गया, बस उस एक मिनट को ढूंढिए जो आपको दूसरों के सामने शर्मसार करता। फिर इसकी अलामतें भी हैं बहुत सारी। आपको कैसे पता चले कि आप कुव्वत बर्दाश्त की कमी की वजह से करते हैं या तकब्बुर की वजह से? तो इसका सिंपल सा इलाज है, देखने की ज़रूरत है। और वो क्या है कि गुस्सा करने के फौरन बाद अगर मुझे रिग्रेट होता है, फौरन बाद स्पॉन्टेनियसली, तो मान लीजिए कि वजह कुव्वत बर्दाश्त की कमी है। और अगर आपको फौरन एहसास कोई नहीं होता, बल्कि आप दिन ब दिन और पक्के होते हैं, आगे मैं आपको वजूह किस में भी लिखा देती हूँ, इस पर हमारी एक और वर्कशॉप भी हुई थी अटलांटा में आज से 4-5 साल पहले, उसमें हमने इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखा था। बल्कि अगर एडमिन्स को मिले तो वो भी ढूंढे और हम वो बातें ना रिपीट करें तो बेहतर है। उसमें हमने डिफरेंट एंगल बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से देखा था। लेकिन अगर आपका गुस्सा जा ही नहीं रहा, आया भी था अभी भी पड़ा दिल में, अब दिल में रखे बैठे हैं, मैंने नहीं बात करनी, तुम जाओ मैं नहीं जा रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो माने की बर है, फिर वो दूसरी बात नहीं ठीक है, कुव्वत बर्दाश्त की कभी, फिर आप बड़े बने हुए थे। फिर तीसरी वजह क्या है? अदम सब्र, पेशेंस की कमी। आप कहेंगे बर्दाश्त और सब्र में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए सब्र तो होता है ना मुवाफिक हालात पे, ना आप नहीं चाह रहे थे, आप कुछ और सोच रहे थे, हो कुछ और गया, राइट। लेकिन बर्दाश्त में तो बाज़ दफ़ा अच्छी बात भी नहीं को बर्दाश्त करता, बाज़ लोगों को अपने देखे ज़रा सा कोई मजाक करें तो भड़क उठते। यानी सब्र में कोई दुख तकलीफ़ आई फिर गुस्सा आएगा। जो बेचारे सब्र बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उनका हाल क्या है कि वो तो हर वक्त भड़कने को तैयार है। कुछ लोगों की बात आपने सुनेंगे, वो कहते हैं इनको तो अच्छी भी बुरी लग जाती है, अरे ये क्या, ये तो पल में तोला पल में माशा। ये जो पल में तोला पल में माशा है ना, ये कुव्वत बर्दाश्त की कमी वाले हैं। एक मिनट में गुस्सा आता है, एक में ठीक हो जाता है। भाई आप अभी गुस्से में गए थे अंदर, अब उतर गए, तो आप सब्र कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्र, अदम सब्र के, सब्र की कमी कैसे है? मसलन हॉर्न पे हाथ रखा, पी 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 पी, ये मेरे आगे क्यों आ गए लोग, ट्रैफिक में फंस गए गुस्सा, चीज़ मांगी अभी नहीं दी सब्र करें गुस्सा, खाने में नमक तेज़ है गुस्सा। यानी सब्र ना होने पे तो बंदा हर वक्त ही आग बगोला बना रहता है, और ये दुरुस्त बात नहीं है। ऐसे लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, और मैं कहती हूँ खुद नहीं होते, साथ वालों को भी कर देते हैं। अल्लाह ना करे घर में कोई एक गुस्से का इस तरह नाजायज़ इस्तेमाल करने वाला इंसान आ जाए, सब की खुशी छीन लेगा, सबका सुकून और चैन ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा इसको पहचानने की ज़रूरत है। एक चौथी वजह होती है नाजुक मिजाजी। बाज़ लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, मसलन लाडली, 4 भाइयों की अकेली बहन, और बाज़ लाडले बेटे, एक बेटा, पहला बेटा, आखिरी बेटा, है ना, ये नाम सुने आप हंस रहे हैं, आपने भी अपने बेटे बिगाड़े हुए, अब नाजुक बना दिया, कभी किसी ने बात ही नहीं डाली। पहले माँ बर्दाश्त करती रही, फिर बीवी करेगी, माँ कर लेगी, बीवी कोई नहीं करेगी। याद रखिए आप अपने बच्चों की जो तरबियत कर रही हैं ना, ये सोच के करें कि ये कल किसी के नसीब में जाने वाले हैं। यकीन करें काबिल रहम है वो बीवियाँ कि जिनके मर्द टॉलरेंस की कमी और इस तरह के नाजुक मिजाज हैं। औरतें यूँ कांपती मैंने देखी हैं, इनको गुस्सा ना आ जाए, देखो जल्दी करो, भाई क्या हो गया, नहीं मैं इनसे पहले पहुँच जाऊँ, तूफान आ जाएगा, सर आसमान सर पे उठा लेंगे, उठाने दें थोड़ी देर, देखें ज़रा गर्दन थकती है कि नहीं थकती। ये नाजुक मिजाजी होती है और इसको समझना चाहिए। एंड पे मैं आपको सवाल भी कर सकेंगे, लेकिन किस तरह टेम करें इसको, थोड़ा थोड़ा तुम साथ साथ ही देख रहे हैं। लेकिन जो बंदा अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से ऐसा है ना, तो उसका इलाज क्या है? उसके मिजाज को स्ट्रॉन्ग करें। आप जितना उसका गुस्सा मानती रहेंगी ना, उतना वो और नाजुक होगा। आप अपना बच्चा भी हो सकता है बिगड़ा हुआ, अब ठीक करें, आपने ख़राब किया आप ठीक करें, और बेटे को आपने ख़राब किया ना तो ठीक करके बहू को दें, क्योंकि माँ के आगे वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बोलेगा, बीवी के आगे बोलेगा। सच्ची जो बात है, हर औरत जो अपने मर्द में कोई बुराई देखती है तो वो अक्सर ये सोचती है, और मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना है, इनकी अम्मा ने इनको बिगाड़ा हुआ है, कहती हैं कि नहीं ये माँ ने ख़राब किया हुआ है। और अमूमन हम इन वजूहात को क्या सोचते हैं, एक और वजह लिख लीजिए कि नफ्स का ग़ुलाम बन जाना। जितना आप अपने नफ्स की ग़ुलामी करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। देखिए नफ्स जो है ना, ये दूध पीता बच्चा है, जितने इसके लाड देखेंगे ये उतने लाड दिखाएगा, और खींच के रखेंगे ना तो सही हो जाएगा। ये नफ्स के माँ उबर नफ्स इन नफ्स मारा तुम बिस्सू, मैं तो अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं कहता, क्योंकि ये तो इंसान को हमेशा बुरी ही बात का हुक्म देता है। तो नफ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर वक्त गुस्सा जो करते हैं ना, पहले एक दफ़ा उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कर लीजिए कि भाई आप मुझे बताइए कि आपको और किस किस बात पे गुस्सा आता है। फिर आप देखेंगे कि उसके साथ इंशाल्लाह ताला जितनी काउंसलिंग होगी, जितना क्लैरिफिकेशन होगी, उसकी वजह से गुस्सा आएगा। एक मतलब उतना गुस्सा दूर होगा। एक और वजह लिखिए, गुस्से की वजह क्या है? उजलत। अब इसको अदम सबर में कर लें या उजलत में अलग कर लें, अलग करने में फ़ायदा ये होता है कि छोटे छोटे चिक्स में से आप अपनी इन चीज़ों को ढूंढेंगे। उजलत क्या है? घर जाने की जल्दी है और आगे ट्रैफिक है, तो हॉर्न पे हॉर्न है। सुबह ऑफिस जा रहे हैं, मोज़े नहीं मिल रहे, जूता नहीं मिल रहा। आप बाहर आने के लिए, पता चला आपकी गाड़ी के पीछे कोई और छोड़ गया, आप परेशान हैं, मैंने बच्चों को लेना था, ये करना था। उजलत बड़ी वजह होती है। एक और गुस्से की वजह होती है, और वो क्या है कि गुस्सा आने की वजह क्या है कि आज के दौर में गुस्से को पैम्पर किया गया, सजा दिया गया, और वो क्या, हीरोइन गुस्सा करती है। वो फलां फिल्म में हमने देखा था कि हीरोइन गुस्से में नाक फुला के फिर रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी, तो मैं भी तो इतनी ही लगूंगी, और उन्होंने दिखा दिया आपको फिल्म में। यानी आज हमने गुस्से को कैसे स्कैंडलाइज कर दिया, फिल्म में दिखाते हैं कि वो हीरोइन साहबा गुस्से में थी, फिर हीरो साहब या शौहर साहब आए, फिर वो बालों में जूड़े में फूल लगा रहे हैं, फिर आगे से घूम के आते हैं, फिर चाय की प्याली खिड़की की रास्ते से आपके आगे रखते हैं। आप कहते हैं वाह मज़ा आ गया ना, आज करके दिखाती हूँ। अब मियाँ साहब आए, आप पूरी तैयारी करके बैठे हुए, मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? अब आप बैठे हैं, वो आए हैं तो आपने मुँह फुलाया हुआ, क्योंकि आप जी 5 बजे आना था, 5 मिनट लेट हो गए। अब आप सोच रहे थे कि आपके जूड़े में फूल लगेगा, आपके लिए चाय का लिप्टन का कप आएगा, लीजिए जनाब हाजिर है चाय पीजिए। पता चला उन्होंने अपना ब्रीफकेस भी ज़ोर से ज़मीन पे मारा और पटकते हुए जूब जाके कमरे में चले गए। एक तो थके हुए आओ, एक इन बेगम के नखरे देखो। और मियाँ साहब जब कमरे में बंद गए, आपका गुस्सा क्या उठना, आपकी आँख भी खुल जानी है, ये क्या हो गया। हकीकत और होती है, हमने गुस्से को इस तरह किया। आप देखें कि गाने बने हुए हैं गुस्से के, हीरोइनों को फिल्मों में, हीरोओं को जिसके अंदर दिखाते हैं उसको सारा देखिए। तो ये चीज़ है, और किसी को ये कहना कि आप तो गुस्से में बड़े प्यारे लगते हैं और आप तो बड़ी हसीन लगती हैं गुस्से में। फिर एक और वजह गुस्से की, रीजनिंग करना, वो कैसे, इसको भी समझ लीजिए। मिसाल है कि बच्चा रो रहा है, तो कोई कहेगा बेटा ये क्यों रो रहा है? बस अम्मा भूखा है ना इसलिए रो रहा है। अच्छा, इसको नींद आई हुई है तो इसलिए रो रहा है। अच्छा जी, यानी जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो हम उसकी रीजनिंग क्या करते हैं कि कोई वजह बता देते हैं। तो क्या मतलब है भूखे होने का, मतलब हमेशा रोना? तो क्या हमेशा खाना खाने से पहले ये रोएंगे बड़े होके भी? नींद पूरी नहीं होगी तो ये गुस्सा करेंगे हाँ? या हम क्या कह देते हैं, असल में वो ये बच्चे गुस्से क्योंकि अब जवान हो रहे हैं ना, टीनेजर हो गए। आप देखिए हर दौर में ज़िंदगी के हमारे पास लॉजिक्स मौजूद हैं गुस्से के आने के। अभी क्या मसला, बच्चा, बच्चा इसलिए गुस्सा आ रहा है, दूध चाहिए रो रहा है गुस्सा आ रहा है, अब बिस्तर चाहिए रो रहा है गुस्सा आ रहा है, थक गया गुस्सा आ रहा है, ठीक है मान लिया। ज़रा सा बड़े हुए, स्कूल गए, दोस्तों ने कोई बात कह दी, ऐसे में स्कूल से थका हुआ आया ना, गुस्सा आ गया। ज़रा से बड़े हुए, खैर से जवानी आई, कहा जवान हो रहे ना, हार्मोनल चेंज आ रही है, गुस्सा आ रहा है। ये भाई आपकी अच्छी खासी बच्ची थी, इसको क्या बन गया, नहीं इसमें जवान हो रही है ना। अच्छा जी माशाल्लाह झूम के जवान हुए आप, जवानी आ गई। अब क्या मसला है जी, आप शादी की उम्र है, शादी नहीं हो रही ना तो गुस्सा आ रहा है। अब क्या मसला है, शादी हो गई है तो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हालात शादी के बाद बदल गए, गुस्सा आ रहा है। भाई अब क्या, अब ये प्रेग्नेंट हो गई है ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये अब डिलीवरी के दिन करीब है तो गुस्सा आ रहा है। अब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो गुस्सा आ रहा है। और आप देखिए इस तरह करते कराते अखीर मीनोपॉज के 40-50 साल के गुस्सों पे हम आ जाते हैं, और सारी ज़िंदगी जो गुस्सा कर रहा होता है उसको पता होता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आज लिख के जाइए अपने पल्ले के साथ ये बात कि कभी किसी के गुस्से को अपने जस्टिफाई नहीं करना। भाई ठीक है आप भूखे हैं, लेकिन गुस्सा क्यों आप कर रहे हैं? ठीक है खाने में नमक कम है ना, ठीक है मैं लेके आती हूँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये जो हम बातें लोगों को कहकर मुतमईन, मौसम बदल रहा है तो गुस्सा, ऑटम आ रहा है तो मौसम, गर्मी सफ़र से आए तो गर्मी, और ये हो गया वो हो गया, ये हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। याद रखिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा इतना नहीं आता रहा कि हमने उनकी मिन्नतें कर करके उनको इस गुस्से का आदि कर दिया होता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों की वजह से नहीं करना। एक और वजह होती है गुस्से के आने की, माजी की महरूमियों का एहसास। ज़िंदगी में जो चाहते थे वो नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बने, गुस्सा आ रहा। साइंस ली थी, नंबर अच्छे नहीं आए, आखिर में आर्ट्स लेनी पड़ी, गुस्सा आ रहा। आपको मेडिकल कॉलेज के सबसे आला कॉलेज में दाखला लेना था, अब वहाँ नहीं मिला, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा गुस्सा कमियाँ, जो बनना था वो नहीं बने, जहाँ सोचा था शादी होगी वहाँ नहीं हुई, गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा था मेरे सिर्फ बेटे होंगे, मेरी तो बेटी हैं, यानी माजी की महरूमियाँ जो होती हैं ना वो दिमाग में से आ जाती हैं। मुझे बचपन में बहुत टोका गया इसलिए गुस्सा आ गया। तो इस तरह की और बहुत सारी वजूहात हैं जो अमूमन इंसान के गुस्से को बढ़ाती हैं। एक गुस्सा जो आना चाहिए जो बहुत कम आता है, और वो क्या है कि खिलाफ शरा काम करते देखकर गुस्सा आना। जैसे आज की आयत मूसा अलैहि सलाम की पड़ी, शिर्क करता देखकर आगे से कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स योर प्राइवेट मामला, कोई बात नहीं, इससे क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे कहना चाहिए था हज़रत मूसा को। ये खिलाफ शरीयत काम को देख कर गुस्सा आना, ये ईमान की अलामत है। ये भी एक वजह होती है, और ये किसको आता है? जितना ईमान पुख्ता होगा। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में क्यों आता है कि उनको देखकर शैतान गली बदल जाता था, गुस्सा आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आता था, कब? जब कोई गलत काम करता था और आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था, और आप बात नहीं करते थे उस बंदे से, आप नज़रें नहीं मिलाते थे, बोलते नहीं थे आगे से। आज भी गुस्से का बेहतरीन इजहार क्या है कि एक इंसान उसमें खामोश हो जाए। खामोशी से बता दें कि आपने ये जो बात कही है ना, ये आपको सजती नहीं है, बस इतना ही बहुत है। बोल के जो कहना है कि देखिए आप ज़रा अपने बात करने के स्टाइल को देखिए, बात सोने भी जैसी होगी, बात बड़ी बुरा, तरीका बड़ा बुरा है आपका, बात तो तब भी समझ आ गई तो आप चुप रहें। कम बोल के दूसरों को उनके गलती का एहसास दिलाना, ये अक्लमंदी होती है। हम अपने बच्चों को ढीठ कर लेते हैं टोक टोक के, बोल बोल के। जैसे अक्सर माएँ आती हैं, कहती हैं हर वक्त इनको कहती हूँ, इनको समझ नहीं आती, आप समझाएं हमारे बच्चों को। तो मैं उनको कहती हूँ देखिए जो हर वक्त आप कहती हैं ना, ये गलती है आपकी, हर वक्त आप मुझे भी कहेंगी तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, कभी कभी कहें, हर वक्त ना कहें, डांट टपट। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बचपन में तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, टोका टाकी होती है। खैर कुछ बातें तो करते रहेंगे, लेकिन गुस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की नज़र में क्या है, इसमें चंद रिवायतें सुन लीजिए। मिश्कात की रिवायत है, आपने फरमाया कि इन्नल गदबा लयुफ़सिदुल ईमान कमा युफ़सिदु सिब्र। बिलाशुबा गुस्सा ईमान को ऐसे फासिद कर देता है जैसे एलवा शहद को। एलवा ऐसे ही है जैसे करेले, जड़ी बूटी होती है, इतनी कड़वी होती है कि शहद में डालें तो शहद की मिठास ख़त्म हो जाती है। यानी गुस्सा ईमान को ख़त्म करता है। ज़रा लिख के देखिए, देखिए जब गुस्सा शहद को, यानी इलवा शहद को कड़वा करता है, तो गुस्सा ईमान को कड़वा करेगा, तो कड़वे ईमान के साथ नमाजें कैसी होंगी, आप सोच सकते हैं। यानी ईमान की इसमें तबाही है गुस्से में। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है, अबू दाऊद की रिवायत है, सख्त गु और दुरुस्त खु आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ज़ाहिर है कि गुस्से में फिर इंसान यही कुछ करते हैं। फिर इसी तरह से तिर्मिज़ी की रिवायत है कि गुस्से से बचो, बेशक ये एक अंगारा है, फ्लेम, जो इब्ने आदम के दिल में भड़कता है। क्या तुम नहीं देखते कि गुस्से के वक्त इसकी गर्दन की रगें भूल जाती हैं और आंखें सुर्ख हो जाती हैं? ये बात सच है ना। गुस्से में बाज़ लोग देखिए कितने भयानक लगते हैं, अपनी शक्ल आप गुस्से में देखें तो आप डर जाएं, और दूसरे जब देखते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। फिर इसी तरह एक और रिवायत है सही मुस्लिम की कि जो नरमी से महरूम कर दिया गया वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह किसी को नरमी दे दे, क्योंकि नरम तबीयत वालों को गुस्सा कम आता है। फिर इसी तरफ देखिए कि गुस्से की ज़िद क्या है। हर चीज़ अपनी ज़िद और अपने अपोज़िट से पहचानी जाती है ना, तो गुस्से की ज़िद क्या है? नरमी, हेल और बुर्दबारी। चलिए आपको कैसे पता चले कि आप गुस्से वाली हैं कि बुर्दबारी वाली हैं? अपने आप को चेक कर लीजिए। जिनमें बुर्दबारी या हिल्म होता है ना, पहली बात यह है कि मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो जाए ना तो आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ तो भड़क उठते हैं ना और भड़का भी देते हैं साथ ही। चंद मिनट सोचिए, जो बात किसी ने कही कोई 1% तो ठीक होगी ना? नहीं, वो 1% ठीक नहीं, वो 99% सही को छोड़कर 1% बात जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है उस पर भड़क उठते हैं। अगर आप भड़क उठते हैं ना अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ को देखकर, तो आप गुस्से वाले हैं, मानिए। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो गुस्से वाले हैं, हालांकि वो शदीद गुस्से वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो मुतकब्बिर हैं, लेकिन वो शदीद मुतकब्बिर होते हैं। इंसान सबसे कम जिसको जानता है ना, वो खुद को دوسروں کی تمخول ہاں خوب خبر ہوتی ہے، اپنی شخصیت کو ہم نہیں پہچانتے۔ پھر اسی طرح جس میں نرمی اور حلم ہوتا ہے نا، اس کی ایک پہچان ہے۔ آپ اس سے اپوزٹ پہ غصے والے کو پہچان لیں کہ جس میں نرمی، بردباری اور حلم ہوگا نا، لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ غصے والے آدمی یا عورت یا غصے والے انسان سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ چیک کیجئے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو صرف اسی پہ غصہ ہے، میرے سے کیوں کٹتے ہیں لوگ، مجھے کیوں اگنور کرتے ہیں، مجھے کیوں اوور لک کرتے ہیں، ساری شادی میں سب کو چھوڑ ملے مجھے نہیں ملے۔ وجہ آپ خود سوچئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی انسان کو اگر لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ ان کے کیا منہ لگنا ہے، بات کر کے تو جان پھنس جانی ہے، بہتر ہے کہ اگنور گریسفلی، تو یہ اس بندے کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو خود کو چیک کیجئے، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ سے ہاتھ پکڑ کے اس کو اور پکڑنا چاہتے ہیں یا آپ سے ہاتھ چھڑانا چاہتے ہیں؟ جس لیول پہ بھی آپ اس کو لے جائیں، عام طور پہ آپ اپنے برابر کے لوگوں میں آپ کو نہیں پتہ چلتا، جب آپ لیڈرشپ پہ یا بڑے بڑے کاموں میں آتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کن لیڈرز کو لوگ پسند کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھیں ساری زندگی خود کام کرتی ہیں بوڑھی ہونے تک، لیکن روتی یہ رہتی ہیں کہ میری بہویں کام نہیں کرتی۔ پہلے بیٹیاں نہیں کرتی تھیں، اب بہویں نہیں کرتی۔ آپ جا کے اندر سے ان کو آبزرو کر کے دیکھ لیجئے، ان کو کام کرانا ہی نہیں آتا۔ غصہ بہت ہے مزاج میں، تنقید بہت ہے، تو پہلے بیٹیوں نے نہیں کی، پھر بہوؤں نے نہ کی۔ تو انسان چیک کرے کہ لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ میرے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جس کے اندر نرمی ہوگی نا، تو وہ گھر میں اور گھر کے باہر ایک جیسا ہوگا۔ اس کے اپوزٹ غصہ ہو طبیعت میں تو گھر والوں کے ساتھ تو بمبرود اور باہر والوں کے ساتھ شیرینی۔ اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ جو لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں نا، وہ گھر والوں کے ساتھ کافی کڑوے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے جذبے تو باہر سے پورے کر کے آ جاتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح ایک اور فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو انسان نرم طبیعت کا ہوتا ہے نا، تو خیر خواہی ہوتی ہے اس میں، دوسروں کے لیے سنسیئر ہوتا ہے، اپنا نقصان بھی کر لے گا لیکن کہتا ہے چلو کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اس کے برعکس جو غصے والا ہوتا ہے نا، وہ سیلفش ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے۔ یہ بتائیے کہ غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ اب فائدے نقصان دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو پہلی بات، غصے کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ قرآن کی آیتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں، حدیثیں بھی بتا دی ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نہیں تھے جیسے ہم بنیں گے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے غصے کا، کہ ہم اس اسوہ حسنہ سے ہٹ جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ حضرت انس سے روایت ہے بخاری کی 6046 نمبر کی، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، یعنی گندی باتیں نہیں کرتے تھے، ولگر ٹاکنگ نہیں کرتے تھے، لوز ٹاک نہیں تھی، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے، نہ گالیاں دیتے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، بس اتنی بات کہتے اور دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی کے جیسا بننا ہے تو پھر ہمیں غصہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک تیسرا نقصان لکھیے غصے کا، غصے کا ایک بہت بڑا نقصان کہ غصے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دیتا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ جیسے غصے والا اپنی گاڑی جا کے مار ہی دیتا ہے دوسرے کو، کہتا ہے چلو اس میری ٹوٹے گی، اس کی بھی تو ٹوٹے گی نا، ہے نا؟ اسی طرح اکثر آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کی حدیں غصے کی حالت میں ہی توڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور نقصان جو بہت بڑا نقصان ہے، کہ غصے کی حالت میں انسان کفر تک آ جاتا ہے، کافر بنا دیتا ہے شیطان انسان کو غصے میں، کہ منہ سے اتنی غلط باتیں بولتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پہ بات کر دیتا ہے کہ میرا اللہ نے بگاڑا اور میں نے اللہ کا پتہ نہیں کیا بگاڑا، اور سارے غم اور صدمے اور دکھ تکلیفیں صرف مجھے ہی آنے تھے، رائٹ؟ پھر اسی طرح ایک اور نقصان کیا ہے کہ انسان کی عبادت اور اس کے ایمان کی مٹھاس چلی جاتی ہے۔ آپ امیجن کریں نا، غصے سے بھرا شخص، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ہے پکا نمازی، چلا گیا نماز پڑھنے، کیا مزہ آئے گا نماز میں؟ دماغ تو کھول رہا ہے، اول تو پڑھے گا ہی نہیں، عبادت چھٹ بھی جاتی ہے، خلل بھی آ جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور نقصان غصے کا کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، شیطان کا تر نوالا بندہ بنتا ہے غصے میں، کیونکہ وہ بھی آ گئے، غصہ بھی آ گئے۔ تو جب شیطان کسی کو اپنے قابو میں لے گا تو کیا خیر دے گا کہ فائدہ نقصان دے گا؟ फिर इसी तरह एक और नुकसान क्या होता है कि गुस्सा बंदे की जन्नत के रास्ते की रुकावट बन जाता है कि आप इधर से मुड़ जाएं, जहन्नुम का टर्न ले लीजिए, जहन्नुम का टर्न ले लीजिए, जन्नत में गुस्से वाले नहीं जाएंगे, ये लिख लीजिए। क्योंकि जन्नत बड़ी पुरअमन जगह है, कोई शोर नहीं, कोई लग नहीं, कोई तासीमन नहीं, कुछ भी नहीं। अब एक बंदा जन्नत में पहुंच गया गुस्से के साथ, तो क्या जन्नत का हुसन बाकी रहेगा? दुनिया का घर जहन्नुम बन जाता है जिस घर में गुस्से वाले लोग आ जाते हैं। फिर इसी तरह आखरत की खैर से महरूम हो जाता है इंसान गज़ब की वजह से। फिर एक और नुकसान है, उम्र छोटी होती है गज़ब वालों की, लिख लें। गुस्सा करने वाले जल जल के अपनी उम्र को खा जाते हैं, नित नई बीमारियों का शिकार रहते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब उनको आम होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि गुस्से की वजह से एक और उसका नुकसान क्या है कि इंसान ज़ाहर, अगर आप देखें अपने किसी तजुर्बे को सामने रखते हुए जो आपको पेश आया या आपने किसी को दिया, कि गुस्से में इंसान बाज़ दफ़ा वो बातें कह देता है जिसका फिर कफ़ारा सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता, राइट? और बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी की कराई गुस्से की वजह से हलाक होती है। आप भी कभी बैठेंगे ना, आप कहेंगे फलां की वो बात मुझे नहीं भूलती, हालांकि उसने हज़ार अच्छी बातें की होंगी ना आपसे ज़िंदगी में, कभी एक कोई ऐसा ताना, कोई इल्ज़ाम, कोई बात लगा दी, आप छोड़ ही नहीं सकते, पर्सनैलिटी लूज़ हो जाती है इंसान की। फिर उसके बाद आप देखिए फ़ायदे भी हैं कोई गुस्सा पीने के, पानी पीते हैं तो फ़ायदे होते हैं ना, जूस पीते हैं तो फ़ायदे हैं, दूध पीते हैं तो होते हैं, तो गुस्से को पीने के क्या फ़ायदे हैं? तो पहली बात, जामे सगीर की एक रिवायत है कि जिस शख्स ने गुस्से को जब्त कर लिया बावजूद इसके कि वो इसको नाफिज कर सकता था, तो अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान और सुकून से भर देंगे। और एक रिवायत पीछे आपको सुना दी है कि अल्लाह ताला जन्नत के क़यामत के दिन उसको खड़ा करके कहेंगे कि जन्नत की जो हूर तुम्हें चाहिए तुम ले लो। गुस्से के वक्त काबू पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जिस शख्स का मुझ पर हक हो खड़ा हो जाए, तो सिर्फ वही शख्स खड़ा होगा जो दुनिया में लोगों को माफ़ करता था। ये रूहुल मानी की रिवायत है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्से का खून प्यारा है तो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, ये मुसनद अहमद की रिवायत है। फिर इसी तरह जो गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे अपने अजाब को रोकेगा और वह अजाब से बच जाएगा, शाबुल ईमान की ये रिवायत है। तो गुस्से के फ़वाद बहुत सारे हैं, इंसान के ताल्लुकात दूसरों से अच्छे रहते हैं, अच्छी मिसाल बनता है, हिकमत आती है गुस्से पे काबू पाने से, हिकमत आती है। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों की तरबियत में जो गलती करती हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको उस गुस्से को समझना नहीं आता। फिर आप देखिए कि गुस्से के अतबार से लोग कैसे होते हैं ना, एक वो होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, इसको वन लिख लीजिए, बाद में आपने चूज़ करना है कि मैं किस में से हूँ, आता भी जल्दी जाता भी जल्दी। दूसरे आता भी देर से तो जाता भी देर से, दो फॉर्म्स होगी, बाकी दो आप खुद ही कर लेंगे। आता जल्दी जाता देर से, और आता देर से लेकिन जाता जल्दी, कौन सा बेस्ट है जल्दी से बताएं बगैर सोचे, 3 सेकंड में, चौथे नंबर का, देर से आए और जल्दी चला जाए। ये जो गुस्से की और गंद की पोटलियाँ गुस्से के साथ ले लेके फिरते हैं ना, इससे इंसानी ताल्लुक तबाह हो जाते हैं। चलिए खुद से पूछिए, मुझे किस किस पे गुस्सा है, किसके लिए रंज है दिल में? क्योंकि फिर गुस्से से ही आगे मुआफ़ी ना मुआफ़ी, ताल्लुकात की बिगाड़ की सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो लेके फिरिए फिर अपने गुस्से को। कभी आपने देखा कि कोई गंदगी अपनी साथ ही लेके फिरे, कचरा ट्रैश किचन का निकाल कर फिर लेके उसको चारों तरफ फिरे? हम तो अपनी गंदगी को उतार के फेंकते हैं जल्दी से कि इसकी स्मेल भी ना हमें आए। तो गुस्सा गंदगी नहीं है। जो लोग अपने दिल में गुस्सा पालते हैं, याद रखिए कि फिर वो अल्लाह की मोहब्बत में सच्चे नहीं हो सकते, कितना ही दीन का काम क्यों ना कर लें। अल्लाह ने सब हाथ में पकड़ा देना कि जाओ भाई छुट्टी करो, बहुत लोगों ने तुम्हें वाह कर दी थी। इसलिए इंसान को हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए। अब थोड़ा सा इलाज को देखते हैं, फिर एंड पे कुछ रैंडम बातें इकट्ठी भी देख लेंगे। नंबर एक, खामोशी। मुसनद अहमद की रिवायत हम पीछे देख चुके हैं। फिर खड़े हैं तो बैठ जाएं और बैठे हैं तो लेट जाएं, ये मुसनद अहमद और तिरमिज़ी की भी रिवायत है। नबी सल्लम का अपना अमल भी कुछ इसी किस्म का होता था। अबू ज़र की रिवायत है अबू दाऊद में 4782। فرمایا تم میں سے جب کوئی غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر غصہ جاتا رہے، خیر ورنہ لیٹ جائے، کیونکہ حالت بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے نا انسان کی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور علاج کیا ہے، وضو کر کے دو نفل پڑھ لیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ، جس پر غصہ آئے اس کو اپنے پاس سے ہٹا دیں یا خود ہٹ جائیں، یعنی وہاں سے ہٹ جائیں، یہ نہ کہیں کہ اب آج فیصلہ کر کے ہی اٹھوں گی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک چیز جو فائدہ دے گی وہ کیا ہے کہ سوچئے جتنا میرا قصور ہے، یعنی سوری جتنا یہ شخص میرا قصوروار ہے، میں تو اللہ کی اس سے زیادہ قصوروار ہوں، رائٹ۔ جتنی ڈانٹ ڈپٹ اور سزا میں اس کو دے سکتی ہوں، اس سے بڑھ کر تو اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ مجھے میرے اتنے کاموں پہ نہیں پکڑتا تو میں کہاں سے اتنی خود مختار ہو گئی کہ میں بھی اس کو پکڑنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آتا ہے کبھی آ سکتا ہے، سب کے بیچ میں جا کر اس سے گلے مل لیں، جو بھی آپ کی دوست ہے، سہیلی ہے، بہن ہے، جس سے دل میں ذرا سا گرج ہے، جا کے کمیونیکیشن کر کے پچھلی ایک بات نہ دہرائیں۔ ہم باتیں دہرانے میں دوبارہ لڑ کے آتے ہیں اور کہتے کہ دل صاف کرنے گئے، وہ دل صاف خاک ہونا تھا، زبان اور گندی کر کے آ گئے۔ کبھی آپ نے کپڑا، یہ جیسے مثال ہے، یہ سفید ٹیبل ہے نا، تو اس پہ داغ لگ جائے تو میں گندے کپڑے سے اس کو صاف کروں گی تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے ایک سٹین تھا نا، تو وہ میرے صاف کرنے سے اتنا بڑا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اور گندے طریقے سے صاف کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بات بتا دوں، دل میں خیر خواہی رکھیں اس بندے کی، آپ دیکھیں گے اللہ اس کا بھی دل پاک کر دے گا۔ ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی، ہم یہ جو آگ کے انگارے بن کے سارا وقت پھرتے ہیں، کسی کو لوگ کیا کریں گے، زیادہ زیادہ آپ سے جان چھڑائیں گے، کنی کترائیں گے، جو آپ میں خیر تھی اللہ وہ بھی نہیں لے گا آپ سے۔ لیکن جتنا زیادہ آپ خود اس بندے کے ساتھ محبت کریں، آپ کو غصہ آتا ہے آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کے لیے دعائیں دیں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کا نفس جو ہے نا وہ اپنے قابو میں آپ کے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کریں اور اس سے پوچھیں کہ جب مجھے کسی پہ غصہ آتا ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو لے کے چلوں۔ پھر ہم نے غصے کی وجوہات میں دیکھا تھا تکبر ہے نا، تو پھر آپ ایک اور طریقہ اپنے لیے کیجیے، اور وہ کیا ہے کہ ہر دن میں کچھ وقت اپنے عیبوں کو ڈھونڈیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے میں یہ بھی کمی، یہ بھی کمی۔ تو جب آپ کو اپنی کمیاں دکھیں گی نا، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگے گا، دوسرے اچھے لگیں گے۔ پھر کچھ کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ کر لیجیے کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں اپنے آپ کو سزا دوں گی، اپنی سزا پہلے سے مقرر کر لیں۔ مثلا ایک دفعہ غصہ کیا تو 2 نفل پڑھوں گی، یا میں 10 یورو صدقے میں ڈال دوں گی، یا میں 1 روزہ رکھوں گی۔ دن بدن سزا بڑھائیں اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے لیے ایک ٹپ رکھ سکتی ہیں کہ آج میں کسی چھوٹے بڑے کو پورے دن میں بالکل نہیں ڈانٹوں گی، ایک دن سے کوشش شروع کریں۔ مائیں ہیں بچوں والی ادھر، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن بغیر ڈانٹے گزر جائے؟ جی پلیز میری مدد کریں، از اٹ پاسبل؟ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ ایک برا دن میں نے کسی کو نہیں ڈانٹنا آج میں نے۔ پھر آپ ایک یہ بھی ٹپ لکھیں کہ میں نے، یعنی ایک بات پہ اپنے آپ کو جما لیں کہ آج سارا دن میں نے بالکل غصہ نہیں کرنا۔ اینڈ پہ آپ کو اس پہ غصہ آنے شروع ہو جائے گا کہ آج میں نے غصہ کیوں نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات کرنی ہے، اور وہ کیا ہے، جس پر مجھے غصہ آئے گا میں نے اس کو ایک تحفہ دینا ہے۔ اب گھر میں 5-10 ڈالر کے یا یہ یورو جو بھی ہے اس کے تحفے رکھ لیں، جس پہ آپ کو غصہ آئے اس تحفے کو پیک کریں، اس کو دے دیں، آپ دیکھیے وہ 5-10 پاؤنڈ کی ڈالر کی محبت آپ کو غصے سے روک لے گی کہ میں نے غصہ کر کے اپنا دینا۔ اور سچی بات ہے، یہاں تو ہم 5-10 یورو کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی کتنی نیکیاں دے آتے ہیں۔ کبھی آپ سوچا کریں، ایک جملہ، ایک منٹ کا کوئی ہمارا میسج، بعض دفعہ ہماری پوری رات کی تہجد ضائع کر دے گا۔ ایک رات نہیں، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جائیں گے قیامت کے دن تو نیکیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، تو کہاں گئیں، چلی گئیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ اتنی پلسرات ہے دنیا میں انسانوں کے ساتھ جینا۔ میں اکثر سوچتی ہوں اللہ تجھے خوش کرنا کتنا آسان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ بڑی جلدی خوش ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کی اس پلسرات میں سے امن سے، سکون سے، خوشی سے گزر جانا بڑی بات ہے. اور بعض دفعہ آپ دو تلواروں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ایک کو خوش کر رہے ہیں تو دوسرا ناراض ہے. مثال ہے، بعض عورتیں ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک طرف ماں باپ آ جاتے ہیں، ایک طرف شوہر ہے. شوہر کو خوش کر رہے ہیں تو ماں باپ ناراض. کبھی اپنے بچوں اور شوہر میں آ جاتی ہے بات. ایک عورت نے مجھے کہا کہ باپ نہیں چاہتا تھا کسی جگہ بیٹا شادی کرے، تو بیٹے نے کہا کرنی ہے، تو ماں نے کہا کروا دیں. تو اس نے کہا اگر تم اس کی شادی پہ گئی تو میں نے نہیں تمہارے ساتھ کبھی بات کرنی. اور پھر مرتے دم تک ایسے ہی ہوا. اب یہ گرج ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا، ان سب کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر اس کو لے. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، غصہ دور کرنے کا علاج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں. یہ حدیث میں ہے. ایک شخص کو آپ نے دوسرے سے جھگڑ ایک شخص کو دوسرے سے جھگڑتے ہوئے جب آپ نے دیکھا تو دیکھا اس کے نتھنے پھولے ہوئے ہیں. آپ اندر آئے، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کوئی اس کو بتاتا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا تو اس کا غصہ چلا جاتا. پھر اسی طرح سے پانی پیجیے، کیونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے استغفار کریں کثرت سے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کیجیے. پھر اس کے بعد ایک چیک لسٹ بنائیں اپنے لیے. ہم اس کو اپنے لیے ایک چیک لسٹ کے طور پہ بھی بنا لیتے ہیں. اس سے کم از کم سیلف اسیسمنٹ بہت ہوگی، آپ کو اس چیز کا کافی زیادہ اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی میں ہوں. بنواؤ، ہمت ہے آپ کے پاس، اپنا آپ کھل کے آ جائے گا. آپ ایسے کریں، اپنے پیج پہ ایک ایسے چوکٹا سا بنا لیں، جیسے وہ کالم نہیں ہوتے تھے تو اس میں ایک جگہ بات لکھیں، پھر اس کے آگے لکھیں ہاں، نہیں، کبھی کبھی. آپ خود سے چند سوال کیجئے. نمبر ایک، کیا مجھے غصہ جلدی آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے؟ یس، نو، یا کبھی کبھی. یہ اینڈ والے لفظ میں آپ خود جا کے اپنے آپ لکھیں گے سوچ کے. پھر اسی طرح، مجھے دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. تیسرے میں لکھیے، بہت جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. پھر چوتھا پوائنٹ لکھیے اپنے بارے میں، میں بہت جلد لوگوں سے بدگمان ہو جاتی ہوں. اب جواب اپنے خود ڈھونڈنا ہے، سمجھا گئے نا، اپنے آپ کو پرکھیں گے آپ. پھر میں بہت جلد بازی میں فیصلے کر لیتی ہوں. پھر میرے ساتھ رہنے والے اکثر مجھے بد مزاج کہتے ہیں. اکثر لوگ میرے غصے کی شکایت کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہوں. پھر آگے خود سے پوچھئے، میں اپنے غصے کو قابو کر لیتی ہوں. اب یس ہے تو یس لکھ دیں، نہیں تو کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں، تینوں کالم میں آپ بعد میں لکھیں. پھر اگلا سوال لکھیے، کیا میری اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے؟ کیا میں مکمل طور پہ سنورنا چاہتی ہوں، بیوٹیفائی کرنا چاہتی ہوں، اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتی ہوں؟ یقین کریں یہ شخصیت نکھارنے کی ٹپس ہیں. ہم ظاہری جتنے مرضی خوبصورت ہو جائیں نا، اگر ہمارا باطن خوبصورت نہیں ہے نا تو لوگ ہم سے کلام کرنا بھی نہیں پسند کریں گے. دور کا ڈھول سہانے، کہ آپ کے پاس رہنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں دور ہی دکھیں، کیونکہ آپ تو اندر سے اتنے گندے ہیں اور آپ اتنا اندر سے سنتے ہیں. پھر اس کے بعد خود سے پوچھئے، کیا میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اپنوں اور غیروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ جس سے غصہ آئے اس سے فوراً معافی مانگ لوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ اور کیا میں آج کے بعد کسی ملازم کو نہیں ڈانٹوں گی، اس پر قائم رہنا چاہتی ہوں؟ اور اسی طرح سے آپ اپنی اسیسمنٹ خود کرتے رہیں. کیا میرا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ لیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. من جدہ وجدہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو کوشش کرے گا نا اس کو ملے گا. پھر ایک اور بات نوٹ کر لیں، یہ اوپر ڈال دیجئے گا اس میں ایڈیٹنگ میں، کہ غصے سے بچنے کا ایک اور طریقہ، یعنی غصے پہ قابو پانے کا، کہ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر کام میری مرضی سے نہیں ہوگا، اس کو ایڈمٹ کریں. پھر راضی باللہ رہے، رضی تو بل یعنی راضی و رضا رہے. پھر اسی طرح ایک اور ٹپ اس میں ہی لکھ لیجئے گا، ایک ٹپ اور لکھ لیں، پہلے سے تیاری کریں. اگر یہ ہوا تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گی، अगर ये हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। और एक तो बड़े ही काम की टिप है, जब गुस्सा आए तो अपने सामने आईना खोल लें और उसमें खुद को देखें, और किसी अपने प्यारे को कह दें कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर दे, बाद में आपको बड़े प्यार से सेंड कर दे। फिर अपनी वो ड्रोनी शक्ल और अपनी खौफनाक गुर्राती हुई आवाज़ सुनकर यकीन करें कि आपको किसी और पे गुस्सा नहीं आएगा सिवाय अपने गुस्से पे। फिर दूसरों को जगह दें, आप सोचें कि दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरी ही मर्ज़ी नहीं, मेरी मर्ज़ी थी आज बाज़ार जाने की, लेकिन मेरे शौहर की भी तो कुछ हो सकती है। अगले को भी जगह दें। आप इस तरह से अपने अंदर नरमी लेकर आएँ, इतनी खूबसूरती लेकर आएँ कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएँ। फिर इसी तरह से आप ये भी अपने लिए एक सोच सकते हैं कि क्या मैं चाहती हूँ कि मेरा रंग काला हो जाए। कोई चाहता है आप में से रंग काला हो जाए? तो गुस्से में रंग काला होता है कि गोरा? काला होता है। तो सारे काले गुस्सा करके काले में हैं, यानी मेरा रंग जल जाएगा, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मैं उम्र में बड़ी लगूंगी। आप खुद सोचें ना, एक बंदा गुस्से में लगता कैसा है? तो वो सारी कराहत वाली चीज़ें मेरे अंदर आ जाएंगी। इंशाल्लाह आप इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते बनाएगा। अब आपकी बारी है, चंद मिनट आप लीजिए, अभी टाइम तो है, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर कई सवाल उठते हैं, तो आप चंद सवाल कर लीजिए। ऑनलाइन वालों को भी इजाज़त है, यहाँ वालों को भी, कि आपको उसमें फिर इंशाल्लाह हम मदद कर दें। जी कोई सवाल नहीं है, सारे सवालों का जवाब मिल गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं आपको थोड़े से रेफरेंसेस दे देती हूँ, शायद आपको फ़ायदा हो। जी
बच्चों की इस्लाह के लिए गुस्सा कर सकते हैं?
जी ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसी पे आने लगी थी। ये जैसे एक ये सवाल होता है कि बिगड़े हुए बच्चों को कैसे ट्रीट करें, गुस्से वाले बच्चों से, गुस्से वाले मियाँ से, ये दो सवाल आम है। ये मुझसे किसी औरत ने आज तक नहीं किया कि गुस्से वाली बीवी से कैसे निपटें, इसलिए बताएं कि जाके मियाँ साहब को सिखाऊँ हैं, अपना पूछते हैं। तो इन दोनों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो सीरीज़ हैं, एक पेरेंटिंग ए टू जी है और एक निकाह ए टू जी है। पेरेंटिंग ए टू जी में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक पूरा टॉपिक 20-25 मिनट का हमने किया था इस बारे में कि गुस्से वाले बच्चों से कैसे ट्रीट किया जाए। आप सुनिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, बल्कि उसमें टीन एज बच्चों के साथ डील करना भी सिखाया गया था। और इसी तरह निकाह ए टू जी में जो आफ्टर मैरिज वाला टॉपिक था, तो उसमें गुस्से वाले शोहर की भी बात है। लेकिन दोनों को जमा करके आपकी बात का जवाब थोड़ा सा यहाँ आप लोगों के लिए भी दे देती हूँ। और वो क्या है कि बच्चों को हम खुद गुस्से वाला बनाते हैं। माँ हकीम होनी चाहिए, पैदा होते ही बच्चे का मिजाज समझती है ना माँ, ये रोता है, ये खाता है, ये खाता है तो बीमार होता है, वो होता है। ग्रोइंग एज से अपने बच्चे का मिलान देखें, माँ बच्चा भी रोता है तो माँ फटाफट उठा लेती है, बच्चा हमेशा रोएगा कि माँ मुझे उठाए। बच्चा रोता है तो माँ फ़ौरन उसके मुँह में दूध डाल देती है, कभी ना डालें, पहले चुप करें, चुप करो फिर दूँगी, वरना उसको पता है माँ को बुलाने का एक ही तरीका, रो लो, रो रहा है चुप फिर आऊँगी। बचपन से ये सब चीज़ें, और हमारी माएँ जो थी पहले दौर की कह लीजिए ससलाफ में, वो इतनी समझदार दुनियावी एतबार से पढ़ी लिखी कोई नहीं थी, लेकिन उनके बच्चे कितने अच्छे थे। माएँ कहती हैं हम सुबह नहला धुला के बच्चे को बिस्तर पर डालते थे और ख़ुद काम करते रहते थे। आज जितने झुंझुने जितनी खूबियाँ वो सारी चीज़ें जो है मौजूद है, फिर भी बच्चे बिगड़े बिगड़े। ये आज जितने बच्चे बिगड़े हुए ना, ये हमने बिगाड़े हैं। वो कहते हैं ना कि मिन्नतें करके तेरी तुझको हमने बिगाड़ दिया। बच्चा दुनिया में बहुत अच्छा आता है। फिर अपने बच्चों की डाइट को कंट्रोल करें, ये भी एक माँ के लिए टिप है। छोटी उम्र में बच्चों को ना चीनी दें ज़्यादा, ना उनको बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें दें, और ना उनको बहुत हाइपर एक्टिविटीज़ लेके दें, फितरत में पालें। सुबह उनको शावर दिलाएं, ठंडे गर्म दूध, नरम गर्मी, उनको बिल्कुल ऐसे पालें जैसे जानवर खुद पल जाते हैं, रिलैक्स होके पालें। जितनी उनकी मर्जियां मानते जाते हैं उतना उनको अपनी मर्ज़ी बनाने की आदत होती है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी सारी तैयारी करके आप उसका नीला पीला जोड़ के रखते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ये एक दो ऑनलाइन की भी चीज़ें देख लेते हैं, उनका भी हक है। जी ये कह रही हैं कि टिप्स फ़ायदे की थी। गुस्सा करते वक्त जो सीखा होता है वो भी भूल जाता है, उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब ये कि अपने साथ किसी एक को ये टॉपिक सुना दें ताकि वो भी सीख लें, और आपको गुस्सा आए तो वो आपको याद दिलाएं, जब उनको गुस्सा आएगा तो आप याद दिलाएं। तो आप सारे ये टॉपिक अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सीख लें, सुन लें, अल्लाह की बना उन्होंने तो सुनने से ज़्यादा सुनाना है। ये तेरी बातें हो रही हैं, ये तुझे सुना रही हैं, हैं जी। जी आई विल शेयर विद माई हस्बैंड. देखते हैं कितनी ज़रूरत है आप में. इफ़ माई मदर इन लॉ यूज़ टू से लेट देम क्राई फॉर वन वीक एट नाइट देन यू विल स्लीप परफेक्टली ऑल नाइट. ये सही है. रात को बच्चे जागते हैं भाई, वो कहते हैं उठो तो हज्जुद पढ़ो, आप उनको दूध पिलाने लग जाती हैं. बच्चों में बहुत कैपेसिटी होती है. हैं अल्लाह अकबर. ये कह रही है मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं, फिर आज लड़ाई पक्की है. चलिए अल्लाह ताला बचा के रखे, हम सब इनके लिए दुआ करते हैं. जी ये लिखती हैं, कहती हैं मेरे हस्बैंड बहुत कूल हैं बट मैं नहीं. ये सच बोलना आ गया कुरान पढ़ के. वो कल एक कहीं, हम पता नहीं कल परसों थे, एक सिस्टर थी, वो कह रही मैं बड़ी लड़ाकी होती थी. कुरान कोर्स में आई है तो वो अपना बता रही थी, मैं तो बड़ी, तो मैंने हैरान थी ये कैसी मखलूक है जो अपनी बुराई कर रही. कहती सच्ची मैं बहुत लड़ाकी होती थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ. और एक पारा भी पढ़ा तो मैं, हम हंस रहे थे, लड़ाके सारी होती हैं, सारी औरतें लड़ाकी होती हैं वूमन, लेकिन मानती नहीं है. तो ये माशाल्लाह मान भी रही हैं. जी मुझे ये, मुझे ही ज़रूरत है, मैं ही बहुत वो हल, मियाँ हलीम है. मियाँ अक्सर हलीम होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, औरतों के मिजाज में हाइपरनेस ज़्यादा होती है. मैं ख़ुद भी शुक्र एक औरत हूँ. पता चले आप कहें कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ, लेकिन आप आजमा के देख लें. ये जो मर्द गुस्सा करते हैं ना, जब लड़ते झगड़ते हैं और चीखते हैं, उसकी भी वजह अभी चंद दिन पहले किसी दर्स में बताई है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं. कोई महरूमी होती है फिर वो ऊँची बोलते हैं. मैंने उनको ये मिसाल दी थी कि जैसे अभी मैं यहाँ और मुझे लगे कि मेरी आवाज़ यहाँ पहुँच रही है तो मैं ऐसा बोलूँगी, लेकिन मुझे शक पड़े कि वो पीछे मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही, एहसास कमतरी होगा ना मुझे, तो मैं चीख के ऊँची बोलूँगी. तो जब कमी आपके अंदर होती है ना, आप उसका इजहार फिर गरजते हैं. और वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं. यहाँ तो मेरा हाल ऐसा नहीं है. तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे वक्त में बरकत दे और हम अपना इलाज करें और अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहें. समटाइम जिस बात पे मुझे फ़ील होता है मियाँ को गुस्सा आया है बट ही रिमेंस काम. जी बिल्कुल. देखिए बीवी बहुत समझदार होनी चाहिए. हमारे वालिद ने एक बात सिखाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आगे भी बचा के रखे, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती. ऑफ कोर्स मर्द अच्छे ही होते हैं, वो अच्छे ही होंगे, लेकिन एक ये बात भी है कि बीवी को अपने मर्द के मिजाज से 15 मिनट पहले ही समझ जाना चाहिए कि वो क्या बिहेव करेगा. ये करूँगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा. बीवी मर्द से आगे सोचे, बजाय इसके कि आप गलत करके फिर उनकी डांट खा के ठीक हों, आप पहले ही वो काम ना करें. मत चिड़चिड़ाएं, मत गुस्सा दिलाएं. बस औरतों को तो खुजली होती है, चिड़चिड़ानी है. और बस मर्द भी ऐसे होते हैं, आते जाते एक वो दबका मार जाते हैं तो बीवियाँ भी आती है कहती चुप करो, इन्होंने भी ठीक हो जाना. अच्छा बाद मर्द कहते हैं खबरदार आज तो बाद ऐद ना करी, तो आप कर लेते हैं तो फिर कहते भी कुछ नहीं है. तो ये धमकियाँ होती हैं. बहरहाल ये क्या लिख रही हैं, अल्लाह अकबर, ये याददाश्त की कोई बातें कर रही हैं. चले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताएं कि आपकी आज तक जो मैरिड सिस्टर्स हैं कितने को झगड़े में गिन सकती हैं है? जी आप बताइए.
मेरी लड़ाई है तो मैं फौरी अपनी गलती तस्लीम करके कहती हूँ कि ये मुझसे गलती हो गई है तो आप मुझे सजा दे लें जो देनी है, तो फिर वो खुद ही बस रिलैक्स हो जाए,
खुद ही रिलैक्स होता है. तो रोज सजा मिलती है. जी जी हस्बैंड ये समझ जाते हैं कि ये इनकी आदत है तो फिर वो इसको अहमियत नहीं देते ना.
सास या ससुर वाले करें, फैमिली वाले तो कहते हैं गुस्से, अगर फैमिली मायके से करे तो कहते हैं हाँ इसमें कोई शर्म ही नहीं है कि आगे से मतलब गुस्सा नहीं करती या कुछ कहती नहीं है.
जी बस देखिए कि जो करें अल्लाह के लिए करें. एक बात आपको मैं बता दूँ, पल्ले से बांध लें, लोगों की नज़रों से बेनियाज हो जाए. आप इसलिए बड़ी अच्छी बनती हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कितनी अच्छी बीवी है, कितनी अच्छी बहू है, तो कोई नहीं फ़ायदा होगा. लोग आपसे खुश ही तब होते हैं जब आपको लोगों की परवाही ख़त्म हो जाती है. ठीक है तो जज़ाकअल्लाह खैर, इतना काफ़ी है. अब ऑनलाइन वाले चाहें तो अपना ले लीजिए, हम दो चार मिनट बस यही कि माशाल्लाह यहाँ जो साथी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कल फिर हमारा सुबह का दर्स है. किधर है कौन नशीना, आप सहमत जी आप बता दीजिए इन सब साथियों को खड़े होकर, जहाँ भी आ सकते हैं, दूर नहीं है. आज हमने माशाल्लाह एक दूसरी जगह जाकर वहाँ से आकर भी आप तक वक्त पे पहुँच गए. तो अगर आप आ सकें तो कल सुबह का दर्स किधर है बता दें आप. कल के दोनों ही बता दें
जी. कल इंशाल्लाह दर्स है
दोनों, नहीं पता नहीं
है मस्जिद में जुमे के बाद 2 बजे. ठीक है जो सूफी साहब की मस्जिद है गुलाब हसन वाली, उस मस्जिद
इधर से तो मुझे लगता है करीब है वो.
हाँ जी इधर से करीब है. फ्लायर्स भी रखे हैं उधर स्टॉल पे ना, आप वहाँ से भी ले सकते हैं इंशाल्लाह.
और परसों तो स्टीम के घर का दस कॉमन
है और फिर वही वाला है.
ٹھیک ہے, تو کل مسجد میں آپ لوگ آ سکتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے آن لائن والے بھی کہ مسجد بند ہوگی جب بھی, تو یعنی نماز کے بعد ہوگا نا انشاءاللہ. باقی اور درس ہیں وہ میرا خیال ہے پرائیویٹ ہیں, لیکن اگر کوئی پرسنلی آپ کو بتائے تو آپ ضرور جائیے. جزاک اللہ خیر. اور ادھر ایک چھوٹی سی بات, ایک منٹ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی جی. آن لائن والے مائک لے لیجیے, یہاں جو کلاسز ہیں اس کی بھی, اس گھر میں بھی کلاس ہوتی ہے رائٹ, تو اس کی ڈیٹیلس کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ بلکہ سائمہ آپ ہی ہیں اس میں جی, کھڑے ہو کے بتائیے. اور آپ میں سے کون کون لوگ اس کلاس میں آتے ہیں؟ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور بہترین طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ سب جو نہیں آتے ان کے نہ آنے کی رکاوٹ میں پوچھ سکتی ہوں جی؟ کوئی بتانا چاہے؟ دیکھیے آپ آ جائیں تو کلاس
تو بلے کر بنا تو قبل ملنا ان سے سمیل علی
اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، جنہوں نے کوشش کی جو آئے ان کے اس عمل کو قبول فرما، اور یا اللہ جو بھی جس کے دل کی خواہش ہے اس کو اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو خیر اور برکت سے بھر دے۔ یا اللہ جو ساتھی بھی یہاں سن رہے ہیں اور جو بات میں بھی سنتے ہیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی دین کی سمجھ مل رہی ہے، یا اللہ ان سب کے لیے اس کام کو آسان کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے تو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے کہ قیامت کے دن جن کو تو بغیر حساب کے داخل کرے گا جنت میں۔ اور یا اللہ تو ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، ہمارے استادوں پہ، ہمارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں پہ اپنا رحم اور فضل فرما۔ یا اللہ تو ہماری کمی بیشیوں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کرنا، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر کے ہمیں اللہ کی نظروں میں مجرم کر دے۔ اور یا اللہ اس گھر پہ اپنا رحم فرما، ہماری بہن نے اس کی کوشش کی، یا اللہ اخلاص کے ساتھ ان کوششوں کو قبول فرما اور اپنی رحمت سے یا اللہ تو ہمیں ان چیزوں کو دن رات کر کے اپنا نام تیرے دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل کرنے والوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر، واسن جزا۔ ان لوگوں کو بتائیں کیسے پڑھیں یہ لوگ نماز، ایسے ہڑبونگ نہیں ہونی چاہیے، ہم آرگنائزڈ قوم ہونی چاہیے۔ آپ ان کے لیے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ جہاں یہ پڑھے، اگر کن کن کا وضو ہے تو جن کا وضو ہے وہ لوگ پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ لوگ ایک جگہ پہ پڑھ لیں، اتنی دیر میں باقی لوگ وضو کریں، لیکن کوشش کریں کہ کیوس نہ ہو۔